السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم بات کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اس سلسلے میں ہے جس طرف سے شاید ہم غافل رہتے ہیں. اپنی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں، جیسے فقر و فاقے سے، بیماریوں سے، امن و امان کی صورتحال کی طرف سے پریشانی رہتی ہے. مگر جس چیز کی طرف سے سب سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور وہ ہیں ہمارے گناہ. انسانوں کے اندر گناہوں کی طرف رغبت کا میلان موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈالا ہے کہ یہ فسق و فجور کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کا نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور انسان کے اوپر گناہوں کا بوجھ چڑھتا چلا جاتا ہے مگر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے جب انسان کا ویٹ بڑھتا ہے تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کتنے پاؤنڈز اپنے اوپر چڑھائے چلا جا رہا ہے. اسی طرح گناہوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیسے انسان کے اوپر ایک بوجھ کی طرح چڑھ رہے ہیں. اکثر انسان جانتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کا کام ہے اور غلط ہے، لیکن اس کا نفس اس کو اتنا ابھارتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھی جائے گی. گناہ کرتے وقت انسان اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے کہ ابھی ساری عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے. اسی طرح دل کو بہلاوے دے دے کر انسان گناہوں کی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کیا سوچتے ہیں، گناہوں سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نقصان ہوتا ہے؟ ہم میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ آخرت میں سزا ملے گی، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی مصیبتیں، پریشانیاں، غم، ٹینشنز، انگزائٹی، ڈپریشن، پرابلمز لے کر آتا ہے. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت سارے گناہ کریں تو پھر کچھ ہوتا ہے، لیکن تھوڑے بہت کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کتنے گناہ کیے تھے جن کی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے؟ صرف ایک. ہم ہزار کر کے بھی سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اسی طرح لاڈلے ہیں جیسے پہلے تھے، اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی اسی طرح برستی رہیں گی، ہم اسی طرح جنت کے بھی حقدار بن جائیں گے. حالانکہ گناہ تو وہ چیز ہے کہ تھوڑے سے بھی ہوں تو انسان کا بیڑا غرق کر سکتے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ایک بات بھی ایسی ناپسند آ سکتی ہے جس سے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم میں اتنی نیچے بنا لیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، صرف ایک بات سے جو منہ سے نکلی ہوئی. اگر اللہ تعالیٰ کو وہ بری لگ جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ جہنم میں جانے کے لیے شاید بہت سارے گناہ کرنے پڑتے ہیں، تب کوئی جہنم میں جاتا ہے. ایک گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک گناہ بھی انسان کو جنت سے محروم کر سکتا ہے جیسے آدم علیہ السلام کو کیا تھا. ایک گناہ بھی انسان کو دنیا اور آخرت میں پرابلمز میں ڈال سکتا ہے. ہمیں یہ تو ڈر رہتا ہے کہ ہمیں یہ فلاں بیماری نہ لگ جائے. ذرا سا ہمیں کہیں درد ہوتا ہے نا تو ہمیں سو طرح کے خیالات آنے لگتے ہیں، مگر کیا گناہوں سے بھی ہم اسی طرح خوف زدہ رہتے ہیں؟ کیا ان کا بھی ایسا خوف، ایسا ڈر ہمارے اندر ہے کہ یہ گناہ اگر مجھ سے چمٹ گیا تو یہ نہ ہو کہ مجھے تباہ کر دے؟ قرآن پاک میں کتنی قوموں کا ذکر آیا، وہ بیماریوں سے تو نہیں تباہ ہوئی، وہ گناہوں سے مٹا دی گئی، और ऐसे मिटाई गई सफा हस्ती से कि उनके नामो निशान भी नहीं मिलते। सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह ताला से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर ही देता है और उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। तो यानी इंसान के गुनाह उसके रिस्क की तंगी का सबब भी बनते हैं। बाज गुनाह ऐसे भी हैं कि वो नेकियों को भी चाट जाते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को चाट जाती है ना, इसी तरह ये ना हो कि इंसान नेकियां कर रहा है लेकिन साथ साथ गुनाह भी करता जा रहा है और वो गुनाह उसकी नेकियों को खा जाए तो क्या बनेगा। आपको वो हदीस अच्छी तरह पता होगी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूछा था, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि कयामत के दिन इतनी नेकियां लेकर आएगा लेकिन लोगों के हकूक मारे होंगे, तो वो लोग आ जाएंगे अपने हकूक लेने के, किसी के साथ कोई जुल्म किया हुआ है, किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई है, तो वो नेकियों के सारे पहाड़ चले जाएंगे। यानी साथ गुनाह भी करता रहा ना, नेकियां तो थी लेकिन गुनाह देखें उसकी नेकियों को चाट गए। ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि जब इंसान नेकी करता है तो उसको बड़ा जोम होता है कि मैं नेकी कर रहा हूं, मैं बड़ा नेक बन गया, और उसके गुनाह उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। वो गुनाह कर रहा होता है लेकिन नेकियों की वजह से अपने दिल को तसल्ली देता रहता है, बहलाता रहता है कि मैं इतने अच्छे काम भी तो कर रहा हूं, तो क्या हो गया अगर ये थोड़े से गुनाह कर लिए था। लोग तो इससे भी ज्यादा करते हैं। तो अगर अक्सरियत जहन्नुम की तरफ जा रही होगी तो हम भी चल पड़ेंगे ये कह के कि सभी तो जा रहे हैं। और देख लें अक्सरियत अल्लाह की नाशुक्री है। अक्सरियत कौमों में जितनी कौमें गुजरी हैं, आप उनके हालात उठा के देख लें कुरान पाक में, अक्सरियत कौमों में कौन से लोग होते थे, ईमान वाले या नाफरमान। तो ये इंसानों की हिस्ट्री रही है, कोई पहली दफा नहीं है, और अब तो कुर्बे कयामत है। अब आप लोगों में अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा देखेंगे, कुफर और शिर्क और बिदात और जुल्म और गुनाह ज्यादा देखेंगे। इसके बावजूद हम वही ट्रैक लेना चाहते हैं जो अक्सरियत का है, सभी कर रहे हैं ना, तो ये सही ही होगा। ये कौन सा क्राइटेरिया। तो अगर हमें पता चल जाए कि ये गुनाह हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है, तो हो सकता है इनसे बाज आने के लिए हम कुछ कोशिश करें। इससे हाफिजा भी कमजोर होता है। अरे ये भी देखें आप, दुनिया की सजाएं तो हैं, आखिरत की सजाएं तो हैं, दुनिया की भी सजाएं हैं। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैंने अपने उस्ताद वकी से कमजोर हाफ़िज़े की शिकायत की तो आपने मुझे फरमाया कि तुम गुनाहों को छोड़ दो। तो इस तरह से इंसान के जो गुनाह है उसके हाफ़िज़े को, हम कहते हैं ना हमारी याददाश्त नहीं है, तो वो याददाश्त क्यों नहीं है, अब हमें क्यों चीजें भूलती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे गुनाहों की वजह से। इसी तरह इंसान इल्म से भी महरूम हो जाता है, क्योंकि इल्म एक नूर है और नूर गुनाहगार दिल में नहीं आता, और गुनाहों की वजह से दिल में भी वहशत रहती है, इंसान अल्लाह ताला से भी दूर हो जाता है, कामों में मुश्किल आती हैं, रुकावटें पैदा होती हैं, और गुनाह कभी एक नहीं रहता, एक गुनाह दूसरे का दरवाजा खोलता है, एक से आगे दूसरा और दूसरे से आगे तीसरा, और इंसान को पता भी नहीं चलता वो कहां से कहां निकल जाता। तो गुनाह करने से इंसान की गुनाहों की नफरत भी खत्म हो जाती है। आज बहुत से गुनाह ऐसे हैं देखे, बहुत आम है और लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं लेकिन एहसास ही नहीं है कि ये भी कोई बुराई है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये नॉर्मल बात समझी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा सिवाय गुनाहों को खुल्लम खुल्ला करने वालों को, यानी इंसान की शर्म ही खत्म हो जाए, उसको ये बात का एहसास ही ना रहे कि ये कोई गलत बात है, उसको खुल्लम खुल्ला करता फिरे। आज देखें मिसाल के तौर पे, एक बहुत सारे गुनाह है लेकिन ये चंद एक, जैसे औरतों का बेहिजाब घूमना कोई बुराई नहीं समझी जाती, बेहयाई की चीजें देखना, उनको सुनना, म्यूजिक, हराम कमाइयाँ, मर्दों और औरतों का मिक्सअप होना, झूठ, बेईमानी, सूद, करप्शन, ये इसको लोग गुनाह नहीं समझते। फहाशी का एक तूफान है मगर इसको एक मॉडर्निज्म समझा जाता है। तो गुनाहों से नफरत खत्म हो चुकी है और बड़े से बड़ा गुनाह भी मामूली सा लगने लगता है, जबकि हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाह के बारे में इस तरह से परेशान रहता है जैसे कोई पहाड़ के ऐन नीचे बैठा हुआ है और उसके ऊपर पहाड़ गिरने को है, बस अभी गिर जाएगा। सोचें वो कितना फिर डर के रहेगा ना, इस तरह अपने गुनाहों से वो परेशान रहता है। और फासिक फाजिर जो मुनाफिक होता है, उसको अपने गुनाह एक मक्खी की तरह हल्के लगते हैं। वो समझता है कि ये कुछ भी नहीं, जो उसके नाक पे बैठी है मक्खी, और यूं अपने हाथ से उसने मक्खी को उड़ा दिया, बस इस तरह से गुनाह है। तो वो बिल्कुल उनको कुछ खातिर में नहीं लाता, कुछ समझता ही नहीं है, कहता इससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम देख लें कि हम किन में से हैं, क्या मोमिनों में से जिनको अपने गुनाह बोझल महसूस होते हैं, या इतने हल्के लगते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। और आप देखें गुनाहों की एक नहुसत होती है जो इंसानों को ही नहीं जानवरों तक को हलाक कर देती है। आप देख लें कौमे नूह, कौमे लूत, उन पर जब आजाब आए तो उनके जानवर भी खत्म हो गए। और एक और बहुत अहम बात है कि वैसे तो अल्लाह ताला किसी का बोझ दूसरे के ऊपर नहीं डालता, वला तजिर वाजिरा तुम विजरा उखरा, कोई बोझ उठाने वाले दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, लेकिन बाज दफा वालदेन का कोई गुना ऐसा होता है कि उन गुनाहों की या उस गुनाह की नहुसत का असर उनकी औलाद पे भी पड़ता है। ये बात समझ जाए, ये उन गुनाहगार वालदेन के लिए तो सजा होती है, बच्चों के लिए सजा नहीं होती, बच्चों के लिए आजमाइश होती है। तो अगर चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे आफतों से बचे रहें, हमारा घराना इस नहुसत से बचा रहे गुनाहों की, तो गुनाह छोड़ने होंगे। इनकी तो इतनी नहुसत है कि जिस्मों पे भी असरात होते हैं। कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम का कद जो था वो 60 हाथ था, और फिर इंसानों के गुनाहों की वजह से आज देखें कितने रह गए इंसान। तो जब लोग अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो जाते हैं तो बरकतें आती हैं। इसीलिए ईसा अलैहि सलाम जब आएंगे तो उसके बाद इतनी बरकत होगी, एक अनार से पूरी जमात फुल हो जाएगी एक अनार खा के। और जब गुनाह होते हैं तो उनकी नहुसत की वजह से बरकतें उठ जाती हैं खानदानों से, घरों से, कौमों से। तो अपने घरों को, अपने खानदानों को गुनाहों से निकालना, और कहीं और हमारा बस चले ना चले, अपने ऊपर तो चल सकता, तो खुद को तो हम पाक करें। अगर हम चाहते हैं कि हमें तहफ्फुज़ हासिल हो, हम हिफाजत में आ जाए अल्लाह ताला की, क्योंकि हदीसे कुदसी अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब मेरा कोई बंदा वो काम करता है जो मुझे महबूब है और फिर उसको छोड़ के ऐसा काम करता है जो मुझे नापसंद है, तो मैं भी उसकी महबूब चीज से उसको महरूम कर देता। और जो इसको मकरूह और नापसंद है उसकी तरफ इसको मुंतकिल कर देता। और जब मेरा बंदा कोई नापसंदीदा काम करता है और फिर उसको छोड़ के वो काम करने लगता है जो मुझे महबूब है, तो मैं भी उसे उसकी नापसंदीदा चीज से अलग करके उसकी महबूब, उसकी पसंदीदा चीज की तरफ ले जाता हूं। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला की इताअत जो है ना, वो एक मजबूत किला है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजत मिलती है, और अल्लाह की नाफरमानी इंसान को अल्लाह की हिफाजत से महरूम कर देती है। तो नाफरमानी करते वक्त सोचे तो सही कि मैं अल्लाह की हिफाजत से महरूम हो जाऊंगी, ये ना हो मेरे बच्चों के ऊपर आफत आ जाए, ये ना हो मेरे घराने पे आफत आ जाए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुनाह करते हैं और आराम से करते हैं, मजे से करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, लेकिन याद रखें गुनाह करते वक्त तो इंसान मजा ले लेता है, उसके बाद उसकी नहुसतें जो आती हैं उनको बर्दाश्त करना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर तैयार हो जाए करें कि उसके बाद कोई मुश्किल आएगी। कोई मुसीबत पड़ेगी, कोई तकलीफ आएगी। और जब कोई तकलीफ आए तो सोचा करें कि कहीं मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुए, ये गुनाहों के असरात तो नहीं है। गुनाहों के तो इतने असरात हैं, इसके ऊपर बाकायदा पूरी पूरी किताबें लिखी गई हैं। तो यहां पे तो वक्त की कमी की वजह से सारे मेंशन नहीं हो सकते। ये तो दुनिया की नहीं, बल्कि जब इंसान दुनिया से जाने लगता है उस वक्त भी इनकी इतनी नहुसत है कि हुस्ने खात्मा से इंसान को महरूम कर देते हैं, अल्लाह ताला की नजरों से गिरा देते हैं, कब्र को अंधेरा कर देते हैं और शैतान को इंसान का साथी बना देते हैं। तो रमजान ये वक्त है जिसमें हम जहां नेकियों की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, वहां इस इतनी खतरनाक चीज को भी हम जरूर कंसिडर करें कि हमने इनसे निकलना है। और ये हैं जिनकी वजह से मैं अल्लाह की रहमत से महरूम हो सकती हूं। और जैसे हमने अपने मुहासबे की बात की थी कि हम अकेले बैठ के अपना हिसाब किताब करें, तो उसमें जरूर अपने गुनाहों पे नजर दौड़ाएं। और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर अगर हमारे गुनाह हमें नजर आ जाए, क्योंकि अक्सर हमें अपने गुनाह नजर ही नहीं आते। हम कहते मैं क्या करती हूँ, वो तो कुछ करती ही नहीं। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरे गुनाह मुझे दिखा दे, क्योंकि अगर दिखेंगे ही नहीं तो तौबा क्या करेंगे। तो ये भी एक गुनाहों का अजाब ही होता है कि इंसान से गुनाह भी छुप जाए, और इंसान गुनाहों में धंसा भी है लेकिन फिर भी उसको अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। तो या अल्लाह हमारी गलतियां, हमारी कमियां, हमारी खताएं, हमारे गुनाह हमें दिखा दे और हमें तौबा की भी तौफीक अता फरमा दे। तो ये तौबा का महीना है, जो हो गया वो हो गया, अब पलटने का वक्त है। अब वो वक्त है कि हम अपने गुनाहों के ऊपर आंसू बहाएं, निदामत हमारे अंदर हो कि हम ये क्या कर बैठे। वरना यकीन जाने अगर नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप को नहीं बचा सकेंगे, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को नहीं बचा सके, तो हमारा वो कौन सा ऐसा रिश्ता है जो हमें बचा लेगा। लिहाजा इस धोखे में ना रहे। अगर हम खुद के साथ खुद मुखलिस नहीं है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कोई दर नहीं है जहां हम जाके पनाह ले सके, वो कोई कुव्वत नहीं है जो हमें बचा ले, कोई जगह नहीं है जहां पे हम छुप जाएं। लिहाजा हमें पलटना होगा, लौटना होगा, इन गुनाहों से तौबा करनी होगी। कल को जो पछताएंगे तो बेहतर नहीं है कि इन गुनाहों पर आज इस दुनिया में पछताएं और इनको हम छोड़ दें। तो ये अपने आप से भलाई है कि अगर इंसान ऐसा करे, लिहाजा हमें इसको बहुत सीरियस लेना है, हमें इन गुनाहों को अपने अंदर से निकालना है। कोशिश कीजिए सारा दिन बावजू रहे, बावजू रहने से भी इंसान के ऊपर एक पाकी का एहसास रहता है। बार बार इंसान वुजू करता है तो उसके गुनाह भी झड़ते हैं। इसी तरह जहां आजकल हम मस्जिद में तरावी पढ़ रहे हैं या घरों में पढ़ रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, तो एक चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, चाहे रमज़ान है या रमज़ान नहीं है, कि मैंने सूरह मुल्क पढ़े बगैर नहीं सोना। सूरह मुल्क इतनी ज़बरदस्त सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम में 30 आयतों वाली एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करती रहेगी, यहां तक कि उसको बख्श दिया जाएगा, और वो यही सूरत। यानी ये इतनी स्ट्रांगली खड़ी होगी इंसान के हक में कि ये सिफारिश करती रहेगी जब तक इस बंदे को बख्श ना दिया जाए। इसीलिए इसको निजात दिलाने वाली सूरत कहा गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की एक सूरत है जिसने अपने पढ़ने वाले की तरफ से अल्लाह ताला से लड़ झगड़ कर उसको जन्नत में दाखिल कराया, और वो सूरत तबारक है। और ये सूरत कब्र के अजाब से भी बचाती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत अलिफ लाम मीम तंजील जो सूरत सजदा है, और सूरह तबारक अल्लज़ी ये ज़रूर पढ़ लिया करो। तो सूरह सज्दा भी पढ़नी चाहिए 21वें पारे में, उसकी भी 30 आयतें, इसकी भी 30 आयतें, तो 60 तो यही हो गई। हमने कहा था हम 100 आयतें पढ़ के सोया करेंगे, तो अगर 100 आयतें पढ़ ली तो पूरी रात की इबादत का सवाब मिल गया। लिहाजा इन दोनों सूरतों को पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई सिफारिशी हो कयामत के दिन, तो इस सूरत को पढ़िए। इसी तरह जैसे हमने कल बात की थी, ये कुरान भी सिफारिशी बनेगा, कुरान भी इंसान के हक में बोलेगा, कुरान भी कब्र का साथी बनेगा। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे राबता किया एडमिशन के लिए। अब इसमें यह है कि आप जहाँ से भी हम पढ़ रहे हैं वहीं से हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये ना सोचें अब हमें सूरह फातिहा से ही शुरू कराएंगे तो फिर हम आएंगे, नहीं, आप इस चीज़ का इंतज़ार ना करें। जहाँ से है, कुरान पाक कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि जो एक तरफ से शुरू हुई, कोई जैसे दुनिया में कोई किस्से कहानियाँ होते हैं, कोई ड्रामा, कोई फिल्में होती हैं, उनमें एक स्टोरी स्टार्ट होती है और उसके बाद अब बीच में से अगर आपने देख ली तो आपको पहली समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुरान तो एक तज़कीर है, हर सूरत का एक मौजू है, हर सूरत अपनी एक खासियत रखती है। तो जहाँ से हैं आप वहाँ से शुरू कर लें, बिल्कुल ये ना सोचें कि हाँ जब शुरू से शुरू होगा तब करूँगी। पता नहीं ज़िंदगी की इतनी मोहलत होती है या नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज शुरू कर दें तो कल को नहीं भी रहेंगे तो कम अज़ कम इस रास्ते में मौत आ जाए। यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह अपने रास्ते में मौत देना, ये कुरान के रास्ते में मौत आ जाए, इसका इल्म लेते हुए मौत आ जाए, तो कितनी खुशकिस्मती की बात है। चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही सीख रहे हो लेकिन कुरान के तालिबे इल्म कहलाएं। मैंने आपको बताया था कि ये कुरान वाले कौन है, अहलुल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको अपना अहल करार दिया है। कितनी बड़ी शर्फ की बात है, अल्लाह की फैमिली, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तो इन चीज़ों से पाक है, लेकिन वो इतना ऑनर देता है अहले कुरान को कि मेरे खास बंदे हैं ये, स्पेशल। तो आप नहीं स्पेशल लोगों में शामिल होना चाहते कि अल्लाह ताला के खास लोग, अल्लाह ताला के VIPs, किसी और काम के ऊपर ये नहीं कहा गया, किसी और नेकी पे नहीं ये कहा गया सिवाय कुरान के, कि अल्लाह ताला ने इनको अपना अहल कहा है और इनको अपने खास बंदे फरमाया, सुभान अल्लाह। तो ये शर्फ आपकी भी नसीब में हो सकता है अगर आप अपनी निस्बत कुरान से जोड़ लें, कुरान वाले कहलाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इसमें शामिल फरमा दे, और अल्लाह ताला इसी रास्ते के ऊपर हमें मौत अता फरमाए। तो इसी तरह आज के जो दुआ है वो इसलिए बहुत ज़रूरी दुआ है कि जो हमने बात की कि इंसान के गुनाह जो हैं बहुत सारी नहूसतें लेकर आते हैं, और उनमें एक नहूसत ये भी है कि नेमतें जो हैं इंसान से छिन जाती हैं, नेमतों का जवाल आ जाता है। तो बहुत डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई ऐसा गुनाह हो जाए कि नेमते हमसे चली जाएं, हमारी प्यारी चीज़ें हमसे चली जाएं। सब चीज़ें नेमते ही हैं जो हमें मिली हुई हैं, कोई भी चीज़ हमारा हक नहीं है। तुम्हारे गुनाह या हमारी नाशुक्रियाँ या हमारी कोई मुंह से बोले हुए ऐसे बोल या हमारी कोई ऐसी बात, ये ना हो कि अल्लाह ताला को नापसंद आ जाए और उसकी वजह से कोई नेमत छिन जाए, क्योंकि ये नेमतें उस रब ने दी हुई है, हम इनके काबिल नहीं हैं। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम डिजर्व करते हों, हम हकदार हों इनके? नहीं, ये तो अल्लाह ताला का सरासर करम है, फजल है हमारे ऊपर कि हमारे गुनाहों के बावजूद वो हमें देता जाता है। तो ये ना हो कि हमारे गुनाहों की पाداش में किसी दिन छीन ले। लिहाजा हम ये दुआ करें, अरे बहुत प्यारी दुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं इंसान जो माने मांग सकता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक, ए अल्लाह मुझे नेमतों के जवाल से बचाना, आज है कल नहीं हो। कितने ही आप दुनिया में लोगों को देखते हैं कि एक दिन नेमतों में खेल रहे होते हैं, मदहोश होते हैं, और अगले दिन उनके क्या हालात हो जाते हैं कि नेमतें छिन जाती हैं। वतहव्वुली आफियतिक, और अल्लाह मुझे ये भी डर लगता है, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ कि आफियत मुझसे छिन जाए, आफियत के बदल जाने से। यानी अभी मैंने आपको पहले बताया था ना कि सबसे जबरदस्त बेहतरीन दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मांगनी चाहिए वो आफियत है, बेस्ट दुआ है। आपसे कुछ ना मांगा जाए ना, आप अल्लाह ताला से ये बस मांगे, अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखरत में आफियत अता फरमा, जरूर ये मांगा कर। ये वो तहफ्फुज़ है जो आपको सारी बुरी चीजों से, सारे शर से महफूज कर लेगा। तो आफियत के बदल जाने से कि आज आफियत है, कल को क्या पता छिन जाए। वफुजाअति निकमतिक, और ए अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह ताला तेरी सजा के अचानक आ जाने से अल्लाह हमें माफ कर दे। अगर हम आज सजाओं से बचे हुए हैं तो ये अल्लाह तेरी रहमत है, हमारा इसमें कोई ऐसा कमाल नहीं है। हम तो वाकई, अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की वजह से हमें पकड़ना शुरू कर दे तो हम बच नहीं सकते। इस सफाए हस्ती से कोई भी चीज, कोई चलने वाला, कोई रेंगने वाला, कोई भी ना बचे अगर अल्लाह पकड़ने पे आए तो। अल्लाह अपनी सजा के अचानक आ जाने से, वह जमी ईसा खौतिक, और अल्लाह तेरी हर किस्म की नाराजगी से। कितनी प्यारी दुआ है ना, अल्लाह ताला मुंह मोड़ ले अगर तो हम कहाँ के रह जाएंगे। तो अल्लाह तेरी हर किस्म की नाराजगी से, कि अल्लाह तू नाराज ना होना, बस हम खताकार हैं लेकिन अल्लाह तू हमसे मुंह ना मोड़ना, हम गुनाहगार हैं लेकिन अल्लाह तू हमसे रूठ ना जाना। तो इतनी खूबसूरत दुआ है, हर दुआ ही मैं सोचती हूँ कितनी प्यारी है, हमें तो शायद समझ भी ना आए कभी मांगते हुए कि ये भी चीज़ हमें मांगनी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मांग के बता दी। तो हमारे जहन में कहाँ आता है कि हम ऐसी बातें भी मांगे। और ये बहुत मुमकिनात में से हैं ये सब चीजें, हम दुनिया में देखते हैं सजाएं आती भी देखते हैं, नेमतों को छीनते हुए भी देखते हैं, आफियत के जाते हुए भी देखते हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी के आसार भी देखते हैं। तो अल्लाह हमें बचा लेना। और आज का जो जिक्र है वो तो जन्नत के खजानों में से है, और बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर, और रिज़्क़ की तंगी का भी इलाज है इसके अंदर। और ये जिक्र क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इतना प्यारा जिक्र है ना, इसलिए कि इंसान इसमें सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अपने आप को बस छोड़ देता है, खेला मेरे अंदर कहाँ कोई ताकत, मेरे अंदर कहाँ कोई कुव्वत, ना गुनाहों से बचने की कोई ताकत कुव्वत है, ना नेकियां करने की कोई ताकत कुव्वत है। अल्लाह सारी ताकत कुव्वत तो तेरे पास है, तो वो सरेंडर कर देता है, अपने आप को गिरा दिया, अपनी वीकनेस अपनी कमजोरी अल्लाह ताला के आगे रख दी कि अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये नेकियां भी को जो थोड़ी बहुत मैं कर रही हूँ ये भी मेरी ताकत कुव्वत नहीं, अल्लाह गुनाहों से भी तूने ही बचाना है, वो भी मेरी ताकत कुव्वत नहीं। तो ये बहुत बड़ा जिक्र है, ये आपको जन्नत के खजाने दिला सकता है, सुभान अल्लाह। तो इस जिक्र को जारी रखें, इससे जैसे मैंने आपको बताया कई बीमारियों का इलाज इसके अंदर है, बहुत ही अच्छा जिक्र है। अल्लाह ताला हमें जिक्र करने वाली जुबान अता फरमाए और शुक्र करने वाला दिल अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मिटा दे हमारे आमाल नामे से, और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم صل